आकांक्षा दौड़कर राजवीर जी के कमरे में गई। वहां जाकर उसने देखा कि वो बेसुध हालत में रिवांश के कंधे पर पड़े हैं। रिवांश के दो लंबे दांत राजवीर जी के गर्दन पर लगे हुए थे। वो दौड़ कर गई और उसने रिवांश को जोर से धक्का दिया। उसके धकेलने से रिवांश राजवीर जी से थोड़ा दूर हो गया। उसे देखकर आकांक्षा जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुमने वादा किया था, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आकांक्षा के धकेलने की वजह से रिवांश उनसे थोड़ी दूरी पर था और उसकी गर्दन नीची थी। अब नजरें नीची करने से क्या होगा राजकुमार रिवांश? सही कहा था तुमने कि मुझे तुम्हें उस दिन जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या यही था तुम्हारा प्यार? रोते हुए आकांक्षा ने राजवीर जी की तरफ देखा, जिनका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। दादू, दादू प्लीज आंखें खोलिए, आकांक्षा ने राजवीर जी को पकड़कर कहा। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो गुस्से में रिवांश की तरफ बढ़ी। अगर मेरे दादू को कुछ हो गया ना रिवांश, तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा, रिवांश ने ऊपर देखा। उसके ऊपर देखते ही आकांक्षा डरकर दो कदम पीछे हो गई। कौन हो तुम? तुम मेरे रिवांश नहीं हो सकते। आकांक्षा ने देखा कि रिवांश की आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं और उसका चेहरा मानो किसी ने जला दिया हो। सही कहा तुमने, मैं राजकुमार रिवांश नहीं हूँ। रिवांश के शरीर से एक कांपती हुई भयानक आवाज बाहर आई। मैं राजकुमार रिवांश का भविष्य हूँ, वो भविष्य जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती। मैं राजकुमार रिवांश की वो नियति में लिखा लेख हूँ जिसे चाहकर भी वो दूर नहीं भाग सकता। ना सदियों पहले भाग पाया था और ना ही अब। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? ये मासूम है और तुम? आकांक्षा की आंखें नम थी। उसकी आंखों के सामने ये भयानक चेहरा होने के बावजूद भी उसे उसके अंदर रिवांश का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। हाँ, ये मासूम है, लेकिन किसी के पैदा होने से पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। इसके पैदा होने से पहले ही इसकी नियति तय कर दी गई थी और इसकी ये नियति खुद इसे पैदा करने वाली में तय की थी। उस कांपती आवाज ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। उस वक्त भी तुमने रिवांश को छला था और आज भी वही करना चाहते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। देखना, मैं रिवांश को इन सब से निकाल कर रहूंगी, आकांक्षा ने कहा। रिवांश के अंदर मौजूद शैतान के साये ने हंसते हुए जवाब दिया, हमें आपके चुनौती स्वीकार है। उसके ऐसा कहते ही रिवांश जमीन पर गिर पड़ा और वो अब दिखने में सामान्य नजर आ रहा था, मानो उस बुरी आत्मा ने उसे आजाद कर दिया हो। आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर जी की तरफ जाए, जो कि मौत के हर पल नजदीक जा रहे थे, या इस वक्त रिवांश का संभाले, जो कि अनजाने में राजवीर जी की जान लेने के लिए चला गया था। आकांक्षा रिवांश को वहीं छोड़कर नाइट ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के पास गई और जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलवाया गया। रिवांश अभी भी एक गहरी नींद में सोया हुआ था, जबकि जानवी और त्रिशान वहां पहुंच चुके थे। उनके आते ही आकांक्षा को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। वो दौड़ते हुए जानवी के गले लग गई और बोली, देखना जानवी क्या हो गया, वहां दादू तो यहां रिवांश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिलहाल के लिए तुम अपने दादू को संभालो, रिवांश को मैं देखता हूं, त्रिशान ने उसे आकर हौसला दिया। वो सबकी नजरों से छुपकर रिवांश को अलीजा के घर ले जा चुका था। अंदर डॉक्टर राजवीर जी का इलाज कर रहे थे। काफी देर बाद एक डॉक्टर बाहर निकल कर आया और कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें अचानक से क्या हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उनके अंदर की खून की हर एक बूंद को सोख लिया हो। मेरे दादू ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? आकांक्षा ने रोते हुए पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इन्हें ब्लड चढ़ाया जा रहा है, हमें और भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। सिचुएशन अभी भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये कहने के लिए आया था कि आप ब्लड का इंतजाम कर लीजिए, यहाँ ब्लड बैंक में ज्यादा ब्लड मौजूद नहीं है। अपनी बात कहकर डॉक्टर वापस अंदर चला गया। उनकी बात सुनकर आकांक्षा रोने लगी। जानवी ने उसे सहारा देते हुए कहा, डोंट वरी, मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, मैं दादू को ब्लड दे दूंगी। फिर भी अगर ब्लड की जरूरत पड़ी तो मैं अपने मम्मी पापा को बुला लूंगी, उनका भी ब्लड ग्रुप सेम है। हम दादू को कुछ नहीं होने देंगे अक्षु। काश ऐसा ही हो, अगर दादू को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उम्र भर यही पछतावा रहेगा कि मुझे उस दिन रिवांश को मार देना चाहिए था। आकांक्षा अभी भी लगातार रोए जा रही थी। रिवांश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अच्छे से जानता है कि दादू तेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, उसके बावजूद उसने ये सब किया। जानवी के चेहरे पर रिवांश के लिए गुस्सा था। आकांक्षा, वो रिवांश नहीं था जानवी, उस वक्त उसके शरीर पर किसी शैतानी रूह का कब्जा था। उसकी आंखों और चेहरे पर उसकी शैतानियत साफ नजर आ रही थी, लेकिन ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं अपने प्यार के मोह में आकर रिवांश को जिंदा छोड़ती और ना ही आज ये सब मुसीबतें खड़ी होती। राजपुरोहित जी ने सही कहा था कि रिवांश का जन्म बुराई से हुआ है, और जिसकी जड़ ही बुराई हो वो कैसे किसी का भला कर सकता है। क्यों ना हम राज पुरोहित जी को यहाँ बुलाएं? हो सकता है उनके पास कोई तरीका हो जिससे दादू को बचाया जा सके, जानवी ने सुझाव दिया। आकांक्षा ने उसकी बात मानकर राज पुरोहित जी को फोन करके हॉस्पिटल में बुलाया। वहीं दूसरी तरफ जानवी ने भी अपने मम्मी पापा को वहां बुला लिया था। वो लोग भी राजवीर जी के लिए खून दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था।